नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और यह भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुई यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। श्री रिजिजू ने संसद में बार बार हंगामा करने को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि संविधान विपक्ष को सवाल पूछने, विरोध करने और मतदान करने का अधिकार देता है, लेकिन संसद की कार्यवाही बाधित करने का नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों देशों के नेताओं के बीच आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापान की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस दौरान भारत की आर्थिक संभावनाओं, उभरते निवेश अवसरों और जापानी संस्थागत निवेश को और सुगम बनाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के वित्त मंत्री नतालियो डी वीटली से मुलाकात की। दोनों के बीच वित्तीय सेवाओं, डिजिटल बदलाव, निवेश को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। बिल ऑफ एंट्री वह घोषणा पत्र है जो आयातक विदेश से माल मंगाते समय सीमा शुल्क विभाग को देता है। इसमें माल की मात्रा, कीमत और उस पर लगने वाले कर की जानकारी होती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अगस्त की शुरुआत में जारी नियमों में संशोधन किया है। इन नियमों के तहत टैरिफ रेट कोटा योजना के अंतर्गत 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई थी। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज लगातार दूसरे दिन तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव होने के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल जारी है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने पहली पारी में 4 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के सत्र में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 131 अंक गिरकर 77,238 पर आ गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन